दिन भर तारीख 6 मार्च दिन रविवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश, सरकार को क्लीन चिट, विपक्ष ने उठाया सवाल।
कीचड़ में ढेला फिका है तो चीटे किस पर जाएंगे? विपक्ष पर, चीटे सरकार पर जाएंगे। तो सरकार को बेदाग बरी मानना, ये तो शायद अपने मियां मिट्ठू बनना है।
गुजरात में हमले की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट और बारिश के कारण एशिया कप के फाइनल में हो रही है देरी। संडे दिन भर में आज निर्देशक प्रकाश झा से जानिए पहली बार एक्टर बनने का अनुभव कैसा रहा।
प्रियंका चोपड़ा कभी नहीं भूलती थी मुझे बताना कि आप डायरेक्टर कहीं और के होंगे, बड़े होंगे, लेकिन आप एक्टर हमसे जूनियर हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता था, उनको चरण स्पर्श भी कहता था मैं।
लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों की जांच कर रहे आयोग ने तत्कालीन जिलाधिकारी, गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोषी ठहराया है, लेकिन अखिलेश यादव की राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में हुए दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में आज पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हालात से सही तरीके से नहीं निपट पाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई हमलों के 24 गवाहों को आतंकवाद विरोधी अदालत के सामने पेशी के लिए पाकिस्तान भेजने की मांग की है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को कई जगहों पर हुए चरमपंथी हमलों में 166 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 9 चरमपंथी भी मारे गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रमुख अभियोजनकर्ता चौधरी अजहर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने भारत को खत लिखकर कहा है कि वो मुंबई हमले के मामले में बयान रिकॉर्ड करने के गवाहों को पाकिस्तान भेजे। ईरान की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए अरबपति व्यवसायी बाबक जंजानी को मौत की सजा सुनाई है। उन पर करीब $3 अरब की हेराफेरी का आरोप था। बाबक जंजानी ईरान के सबसे अमीर व्यापारी हैं, जिन्होंने प्रतिबंधों के दौरान ईरान से तेल की बिक्री जारी रखने में मदद की थी। उन पर सरकारी खर्चे पर अपनी दौलत बढ़ाने के भी आरोप लगते रहे हैं। जंजानी की वकील ने कहा कि मुकदमे को लेकर राजनीति हुई है। ईरान के न्याय विभाग के प्रवक्ता गुलाम हुसैन मोहसेनी एजही ने सरकारी टीवी पर सजा के बारे में ये कहा।
حکم آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگری که
बाबक जंजानी और दो अन्य लोगों पर प्राथमिक मुकदमा चलाया गया है, सजा सुनाई गई है। अदालत ने ये फैसला लिया है कि ये दोनों देश की जमीन पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और इन्हें मौत की सजा दी गई है। गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेही के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के शहर हिल्ला में भीड़भाड़ वाले एक नाके पर आत्मघाती हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विस्फोटकों से भरे एक ट्रक में धमाका किया गया, जिससे नाके पर मौजूद अन्य वाहनों में सवार लोगों की मौत हो गई। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। 2 साल पहले भी हिल्ला में एक नाके पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि पिछले 1 साल में करीब 3 लाख अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दी गई है। इनमें से 2 लाख अधिकारियों को हल्की सजा दी गई है और करीब 82,000 लोगों को कड़ी सजा सुनाई गई है। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार मिटाने को अपनी सरकार के एजेंडे में मुख्य स्थान दिया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं हिंदी सेवा से कार्यक्रम दिन भर। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। साल 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार को तो क्लीन चिट दी गई है, लेकिन तत्कालीन गृह सचिव, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दंगे न रोक पाने का दोषी ठहराया गया है। विधानसभा में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में दंगों के लिए 14 प्रमुख कारणों का जिक्र किया है। उधर विपक्ष ने राज्य सरकार को क्लीन चिट दिए जाने की कड़ी आलोचना की है। एक रिपोर्ट के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
मुजफ्फरनगर दंगों की न्यायिक जांच के लिए गठित जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट पिछले साल सितंबर महीने में ही सरकार को सौंप दी गई थी। सरकार ने आज उस पर कार्रवाई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, जिसमें स्थानीय प्रशासन की अक्षमता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यही नहीं, आयोग का यह भी कहना है कि दंगों से ठीक पहले डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर कर देना भी दंगों का प्रमुख कारण बना, क्योंकि इससे हिंदू समुदाय, खासकर जाट समुदाय के लोग भड़क गए। आयोग का कहना है कि इन्हीं कुछ वजहों से दोनों समुदायों का ध्रुवीकरण हुआ और परिणाम भीषण दंगों के रूप में सामने आया। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। भाजपा का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट में वही बातें कही गई हैं जो अभी तक भाजपा कहती रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं कि अधिकारियों को दोष देकर सरकार बरी नहीं हो सकती।
सरकार को क्लीन चिट कैसे मान ली जाए, जब सरकार के काम करने वाले अधिकारियों, डीएम, एसएसपी, विभिन्न लोगों के कार्य के बारे में टिप्पणी की है आयोग ने, तो टिप्पणी अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर जाएगी। कीचड़ में ढेला फिका है तो चीटे किस पर जाएंगे, विपक्ष पर? चीटे सरकार पर जाएंगे तो सरकार को बेदाग बरी मानना, ये तो शायद अपने मियां मिट्ठू बनना है।
वहीं कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि प्रथम दृष्टया तो ऐसी घटनाओं के लिए अधिकारी ही दोषी होते हैं, लेकिन इससे सरकार को क्लीन चिट नहीं मिल जाती।
प्राइम ऑफ एशिया तो सरकार तो बाद में आती है, सरकार के नॉमिनी एसएसपी, डीएम, डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारी होते हैं, तो तत्कालिक प्रभाव से जो एक्शन लेना होता है वो तो इन्हीं लोगों को लेना होता है। जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ऊपर के मामले पर जाता है कि इससे क्या कार्रवाई की जाए।
रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने के बाद अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार पहले से कहती आ रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसा ही होगा। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद:
सबसे अहम बात यह है कि सरकार जिन अधिकारियों को पोस्ट करती है उनकी जिम्मेदारी बनती है गैर जिम्मेदाराना जो काम किया वो रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट को किसी तरह से पॉलिटिकलाइज नहीं करना
राजनीतिक दल को। भाई जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार ने पहले फैसला किया था, जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर जस्टिस विष्णु सहाय साहब की रिपोर्ट में अधिकारी दोषी पाए गए हैं, पुलिस के कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
वहीं जानकारों का कहना है कि यदि गृह सचिव को दोषी ठहराया जा सकता है तो इसके लिए कई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि निर्णय लेने में उनकी भूमिका भी अहम होती है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राधेकृष्ण कहते हैं:
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दंगों के करीब एक महीने बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि दंगे हमारी सरकार के लिए बदनुमा दाग हैं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुजफ्फरनगर के दंगे मुझे बार बार परेशान करते रहेंगे। ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तो है, लेकिन जिस तरीके से नेताओं को छोड़ दिया गया है, बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया गया है, उन पर कहीं कोई इससे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट को बहुत आसानी से हजम किया जा सकता है। अगर गृह सचिव को दोषी ठहराया जा सकता है तो फिर डीजीपी को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है?
मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। अब देखना यह है कि सरकार इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और उधर उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद की 28 सीटों के चुनाव नतीजे आ गए हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली और उसने 22 सीटें जीत ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई और उसने 21 उम्मीदवार अपने उतारे थे मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवार खड़े करे जिसमें से उसके 2 उम्मीदवार जीते। कांग्रेस को रायबरेली की 1 सीट पर कामयाबी मिली है, उसने एक ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा, जबकि अन्य 3 सीटें 2 अन्य स्वतंत्र पार्टियों के खाते में गई हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
उधर गुजरात में चरमपंथी हमलों की आशंका के मद्देनजर बेहद सतर्कता बरती जा रही है और एनएसजी की टीमों को चौकस कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि चरमपंथियों का मकसद कल महाशिवरात्रि के दौरान राज्य में गड़बड़ी फैलाना है। गुजरात के डीजीपी पीसी ठाकुर ने बताया,
ये कल इनपुट हमें मिला है और उसके तहत तत्काल पूरे गुजरात राज्य की पुलिस टीम को सतर्क कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है। लगातार कॉम्बिंग चल रहे हैं, चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और जो भी सिक्योरिटी सस्पेक्ट्स हैं उनकी छानबीन हो रही है और जो भी शंकास्पद विस्तार हैं उनकी भी छानबीन हो रही है।
पुलिस का कहना है कि सभी संवेदनशील स्थानों, पूजा स्थलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोमनाथ मंदिर, द्वारिका मंदिर, अक्षरधाम, बिजली संयंत्रों, सरदार सरोवर बांध और रक्षा प्रतिष्ठानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। और उधर एशिया कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन बारिश की वजह से मैच अभी शुरू नहीं हो पाया है। इस बारे में ताज़ा जानकारी भी कार्यक्रम में आपको आगे देंगे, लेकिन बात उससे पहले अमेरिका की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने के लिए दोनों ही पार्टियों, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच उखाड़ पछाड़ जारी है। कल हुए मुकाबलों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 जीत और 2 हार के साथ प्राइमरी चुनावों का नतीजा जहां 50-50 रहा, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स ने कंसास और नेब्रास्का में जीत दर्ज की और हिलेरी क्लिंटन को जता दिया कि मुकाबला एक तरफा कतई नहीं है। हालांकि लुइजियाना में वो बाजी मारने में कामयाब रहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी में जिस तरह सैंडर्स और क्लिंटन के बीच आमने सामने का मुकाबला है, रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप और टेड क्रूज भी ऐसा ही मुकाबला चाहते हैं और बाकी दावेदारों से रेस से हट जाने को कह रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा वैभव श्रीवास्तव से।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे मुख्य उम्मीदवारी के दावेदार टेड क्रूज के साथ सीधा मुकाबला चाहते हैं। उन्होंने अन्य दावेदारों मार्को रूबियो और जॉन कैसेट से नॉमिनेशन की दौड़ से ही हटने को कहा।
Marco Rubio had a very, very bad night, and personally, I'd call for him to drop out of the race. I think it's.
ये रात मार्को रूबियो के लिए बहुत बुरी थी और निजी तौर पर मैं उनसे कहूंगा कि इस दौड़ से पीछे हट जाएं। अब वक्त आ गया है कि वो उम्मीदवारी की दौड़ छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि टेड क्रूज से सीधा मुकाबला करूं। इसमें बहुत मजा आएगा। टेड न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया में नहीं जीत सकते। मैं उन्हें सीधे हराना चाहता हूं।
रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। पिछले सप्ताह सुपर ट्यूसडे में ट्रंप ने 11 में से 7 राज्यों में जीत दर्ज की थी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंदी और टेक्सास राज्य के सेनेटर टेड क्रूज ने कैंसस और मेन में जीत दर्ज की है। कैंसस में क्रूज को 48% मत मिले, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 23% से भी कम मत हासिल हुए। टेड क्रूज ने कहा कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में उनका अभियान गति पकड़ रहा है।
The 65% of Republicans who recognize Donald Trump is not the best candidate to go head-to-head with Hillary.
65% Republican मतदाता ऐसे हैं जो मानते हैं कि हिलेरी क्लिंटन से मुकाबले के लिए डोनाल्ड ट्रंप सही उम्मीदवार नहीं हैं। अगर ट्रंप हार गए तो रिपब्लिकन पार्टी एक पूरी पीढ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट हार जाएगी। हम बिल ऑफ राइट्स हार जाएंगे, सेनेट हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसलिए रिपब्लिकन मतदाता मेरे अभियान के साथ जुड़ते जा रहे हैं।
ये थे सेनेटर टेड क्रूज के शब्द। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी की रेस में वर्मोंट से सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कैंसस और नेब्रास्का में जीत दर्ज की है, जबकि हिलेरी क्लिंटन ने लुइजियाना में एक बड़ी जीत हासिल कर अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी को और मजबूती दी। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के जीतने से अमरीका को भारी नुकसान होगा।
We have to win this election. And we all know the stakes.
हमें ये चुनाव जीतना ही है, हमें ये जीतना ही होगा, क्योंकि लगातार दांव ऊंचा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से होने वाली बहस और उनके मुद्दों का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। हम उन्हें व्हाइट हाउस जीतने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग राष्ट्रपति ओबामा द्वारा किए गए विकास को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे।
ये थे हिलेरी क्लिंटन के शब्द। वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स को पिछले सप्ताह सुपर ट्यूसडे वोट में हिलेरी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन कैंसस और नेब्रास्का में जीत से उनके अभियान को गति मिलेगी। हालांकि क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में काफी आगे निकल चुकी हैं। उम्मीदवारी के लिए हुए अब तक के मुकाबलों में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप 12 मुकाबलों में जीते हैं, जबकि टेड क्रूज 6 राज्यों में और मार्को रूबियो केवल 1 राज्य में। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेट पार्टी द्वारा हुए मुकाबलों में हिलेरी क्लिंटन 11 राज्यों में और बर्नी सैंडर्स कुल 7 राज्यों में जीते हैं।
ये थे वैभव श्रीवास्तव। और अब बात कर लेते हैं एशिया कप की। आदेश जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, फाइनल मुकाबला शुरू होगा या नहीं होगा?
जी देखिए, उम्मीदें तो पूरी हैं क्योंकि ग्राउंड स्टाफ काफ़ी मेहनत कर रहा है और किसी को भी आशंका नहीं थी। यहाँ तक कि अखबारों में जो प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन मौसम ने जिस तरह का खेल बदला, देखिए दिल्ली में भी बारिश हुई और ये बारिश कम बल्कि तूफान जैसी हालत थी आज।
मौसम ने खेल कर दिया
जी, और बहुत लंबी लंबी लाइनें स्टेडियम के बाहर लगी हुई थी। ये भी सुनने में आ जा रहा है कि टिकट बहुत महंगे दामों में खरीदने के लिए लोग उत्सुक थे, और हों भी क्यों नहीं, क्योंकि मेजबान है,
मुकाबला है, और इसके बाद वर्ल्ड कप भी होना T20
और मेजबान टीम फाइनल में थी, और भारत और अब बांग्लादेश जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये शेर और बकरी का मुकाबला होता है। अब बांग्लादेश ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया,
भी मजबूत टीम हो गई है,
तीन मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंचे थे। तो 8:30 बजे के करीब कुछ सूचना मिल सकती है कि कितने ओवर का मैच होगा, ऐसे अंतिम निर्णय तो 10:30 बजे लिया जाएगा। अब ऐसे में अगर कुछ कम ओवर का मैच होता है तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि भारतीय टीम में बेहद आक्रामक खिलाड़ी हैं। लेकिन देखिए 2020 मुकाबला है, मैच जब शुरू होगा तभी देखा कुछ रोचक बातें पता चलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब BBC संडे दिन भर में मिलिए फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से, जिनकी फिल्म जय गंगाजल हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें न सिर्फ उन्होंने कैमरे के पीछे निर्देशक की भूमिका अदा की है, बल्कि पहली बार वो कैमरे के सामने बतौर अभिनेता भी दिखाई दिए हैं। BBC संवाददाता स्वाति बख्शी ने उनकी ताज़ा फिल्म, उनके करियर और इस समय देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जारी बहस, इन सब तमाम मुद्दों पर उनसे लंबी बात की।
प्रकाश जी, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद आपका, BBC से बात करने में हमेशा ही अच्छा लगता है।
13 साल पहले आपकी फिल्म आई थी गंगाजल, अब जो फिल्म आई है जय गंगाजल, उसमें कहानी को आपने आगे बढ़ाया है या कोई और बात है जो इन दोनों फिल्मों को जोड़ती है?
विषय एक ही है, पुलिस और समाज के संबंधों को लेकर के गंगाजल बनी थी, और ये फिल्म भी 13 साल बाद हमारे भारत के समाज में क्या बदलाव हुआ है और अब पुलिस और समाज के कैसे संबंध हैं, और कोई नई कहानियाँ जो निकली हैं जो इंटरेस्टिंग है, और एक महिला पुलिस की कहानी।
बिहार में भागलपुर ब्लाइंडिंग वाला जो मामला था उसे आपने गंगाजल की कहानी में बुना था, तो क्या इस बार भी किसी वास्तविक घटना के इर्द गिर्द ये कहानी बुनी गई है?
देखिए, मेरी तो कहानियों में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं या जो भी ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं या जो भी उस कहानी की रीढ़ होती है वो सब वास्तविकता पर आधारित रहती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कोई कैरेक्टर रियलिटी से इंस्पायर्ड हो या कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो जैसे प्रियंका जी का कैरेक्टर है आभा माथुर, तो ये आभा माथुर, कई आभा माथुर से मैं मिल चुका हूँ, जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जिनकी एक्सपीरियंसेस अपनी हैं, कहानियाँ हैं, और कहीं ना कहीं से कुछ किसी के मैनरिज्म, किसी की कोई लाइन, किसी की कोई बात, किसी ने कोई चीज़, वो सारी चीज़ें जुड़ करके हमारे कैरेक्टर को जो बढ़ाने में, उसका इजाफा करने में जो फ़ायदा होता है वह हम इस्तेमाल करते हैं।
एक महिला पुलिस अधिकारी को केंद्र में रखने के पीछे कोई ख़ास वजह या कोई ख़ास अनुभव रहा आपका जो फिल्म का आधार बना?
नहीं, वो तो खैर ऐसे भी पता चलता है, क्योंकि पुलिस की नौकरी मर्दाना नौकरी मानी जाती है, और पुलिस की नौकरी में महिलाएं भी वही ड्रेस पहनती हैं और उसी तरह से वो पेश आती हैं, तो उनको हमेशा मतलब सामना करना पड़ता है दिक्कतों का इस मामले में, कि आमतौर पर उन पर विश्वास नहीं करते लोग, कि मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए किसी को अरेस्ट करने के लिए जाना हो, कहीं वारंट सर्व करने जाना हो, कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में जाना हो, तो आमतौर पर खास करके लोअर रैंक में महिला कांस्टेबल हो या महिला सब इंस्पेक्टर हो या कुछ इस तरह को, तो उनको आसानी से ट्रीट मतलब ये चीज़ें ये काम नहीं बताते। लेकिन हाल फिलहाल में और ख़ास करके पिछले 10-12 वर्षों में जब हमारे यहाँ महिला एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें होती रही हैं, तो जैसे समाज में होती रही है वैसे पुलिस में भी हो रही है। पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और महिला पुलिस ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स ने हर वक्त मौके निकालकर, अपॉर्चुनिटीज निकालकर और अपने आप को प्रूव किया है।
आपने इस फिल्म में एक बड़ा काम किया है, एक्टिंग में कदम रख के 63 साल की उम्र में कैमरा के पीछे से निकलकर सामने जाना, ये क्यों जरूरी लगा प्रकाश झा को?
नहीं, उम्र तो खैर दिमाग में होती है चीज, और दूसरी चीज ये है कि जिस कैरेक्टर का मैं रोल कर रहा हूँ वो उम्रदार कैरेक्टर है, DSP का कैरेक्टर है, और भोलानाथ सिंह नाम है उसका। कुछ समय से मैं ये महसूस तो कर ही रहा था कि मेरे क्रिएटिव कामकाज में कुछ नया एक निकल के आना चाहिए, कुछ नई चीज़, नए चैलेंज होने चाहिए, तो एक्टिंग कहें या परफॉर्मेंस, मैं उसको मानता हूँ कि परफॉर्म करने की जो इच्छा थी वो थी, और ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया है। जब मैं इसके बारे में तलाश कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, और डीएसपीज बहुत सारे चार पांच जो हैं जिनके जिनसे बहुत समय तक बात करता रहा और निकल के कैरेक्टर जो आए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भोलानाथ सिंह डीएसपी का कैरेक्टर जो है ये करना चाहिए, हालांकि वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स है। तो किया हमने और करने में बहुत मजा आया।
एक डायरेक्टर के लिए अपने आप को ही डायरेक्ट करना कैसा प्रोसेस होता है, ये उसमें ज्यादा आसानी होती है या ये ज्यादा मुश्किल है?
नहीं, देखिए, नज़र तो एक डायरेक्टर की और एक्टर्स को तैयार करने की हमारी शुरू से रही है, और हम लोग ऐसा मानते भी हैं कि मेरी फिल्मों में एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज अच्छे होते हैं, चाहे छोटे किरदार हों या बड़े किरदार हों। वो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि मैं एक्टर को डायरेक्ट बहुत कम करता हूँ। हम सेट के ऊपर में बहुत कम डायरेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी चीज़ लेकर के आए, तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है पहले से मैं देता हूँ। तो मेरे लिए भी वही लागू होता था कि मैं अपने आप को पहले से तैयार कर लूँ, और चूंकि सभी बाकी के सभी एक्टर्स के साथ मैं लगातार मिलता रहा, बात करता रहा, तो मुझे वो रिएक्शन सुन के मिलते रहे, और हम एक साथ जुड़ करके जब तो सेट पे जब हम आए काम करने के लिए तो बहुत मुश्किल नहीं हुई। पहले दो तीन दिनों में हमेशा ऐसा होता है कि जब आप शुरू करते हैं, रियल सीन्स करते हैं, रिहर्सल की बात नहीं, रियल सीन्स करते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्शन का उतना अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितना प्रोजेक्ट करें, कैसे करें, तो थोड़ा, लेकिन बहुत समय नहीं लगता है, आप उसको पकड़ लेते हैं। और चूंकि मैंने कोई दूसरा काम नहीं, यही किया था, देखा था, समझा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये थोड़ा सा मज़ा ज़रूर आता था कि मुझे सब सेट के ऊपर में जूनियर एक्टर समझते थे, मेरी खिंचाई भी होती थी उस हिसाब से। प्रियंका चोपड़ा कभी नहीं भूलती थी मुझे बताना कि आप डायरेक्टर कहीं और के होंगे, बड़े होंगे, लेकिन आप एक्टर हमसे जूनियर हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता था, उनको चरण स्पर्श भी कहता था मैं, और बाकी के भी जो एक्टर्स थे, मानव या निनाद या दूसरे एक्टर्स थे, सब कई फिल्में कर चुके थे, तो सबकी अपनी एक्सपीरियंस तो थी, तो सबसे मुझे सीखने को भी मिलता था, और अच्छा लगा काम करके।
सेंसर बोर्ड को जय गंगा जल से दिक्कत रही है शायद, तो क्या आपको कट्स लगाने पड़े हैं उसमें?
देखिए, ऐसा है कि सेंसर का काम है अपना, और जो जिस तरह से सेंसर हमारे यहाँ काम करती है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। और जब कोई व्यक्तिगत रूप से नई चीज़ लाने की कोशिश करे, जैसे पहलाज निलानी साहब ने की, तो उसमें फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। वही चीज़ें जो हमें पहले गंगा जल में या अपहरण में या चक्रव्यूह में जो बहुत ईजिली अप्रूव हो गई और यूए सर्टिफिकेट दिया गया, इस बार जो है वो उनको दिक्कत होने लगी उसको क्लियर करने में। मामूली जो बात बोलचाल की भाषा में हम जैसे साला वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वो आपत्ति करने लगे, तो खैर कोई बात नहीं है, हमने उनसे चिट्ठी लेकर के और ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया और सारी चीज़ें अप्रूव हो गई, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी कट भी नहीं है, एक लाइन को चेंज करने को बोला है, वो कर दिया हमने, और चेंज करने को, निकालने को नहीं बोला, और एक विजुअल था उसके 2-3 सेकंड कम करने को बोले, वो भी कर दिया, बस और कुछ नहीं।
बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं पहलाज निहलानी, उनसे आप खासे खफा लगते हैं?
बिल्कुल नहीं, मतलब मैं अपने विचार व्यक्त किया मैंने उनके अगेंस्ट में, व्यक्तिगत थोड़ी उनसे कोई समस्या है, और अपने मान्यताओं के तहत उन्होंने काम किया और अपने हक के तहत हमने काम किया, तो उसमें क्या दिक्कत है।
और कुछ परेशानी शायद बीजेपी के जो बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन, उनको भी थी?
उनको दिक्कत थी, लेकिन हमने उनको बता दिया कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, और बड़े अच्छे विधायक हैं, वो 3-4 बार पहले भी चुने जा चुके हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी छवि अच्छी है, तो उसको बिगाड़ने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे फिल्म में जो विधायक हैं उनका नाम बबलू पांडे है, और हमारे फिल्म में जो जिला है वो भले बांकीपुर है, लेकिन कस्बा जहाँ सारी कहानी होती है वो लखीसराय है, तो ये कोइंसिडेंटल चीज़ें होती है। अब चूंकि मैं उस इलाके का हूँ, वही नाम हमारे दिमाग जहन में आते हैं, तो मैं डाल देता हूँ, लिखता हूँ बांकीपुर का, तो मुझे पता भी नहीं था कि बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी है भी।
प्रकाश जी, आपकी फिल्मों की लिस्ट पर अगर नज़र डालें तो मुश्किल नहीं है कहना कि आपकी ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो तो वो सोशियो पॉलिटिकल मसलों पर ही आधारित होती हैं, तो आपकी नज़र क्यों इसी तरह के मुद्दों पर टिकती है?
मुझे जो आसपास घट रहा है या समाज जिस तरह से चल रहा है या किसी कारण बहुत भीषण असर समाज के बड़े तबके में होता है वो समझना देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और जब भी जानने की कोशिश करता हूँ तो उसके कई लेयर्स और कहानियाँ मुझे मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी जो है वो फिक्शन से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, रियलिटी जो है उसमें बहुत ताकत है। तो उसके अन्वेषण में, उसके खोज में जो कहानियाँ निकलती हैं वो शेयर करना चाहता हूँ।
तो क्या स्क्रीन पर पहुँचने से रियलिटी पर कुछ फ़र्क पड़ता है या उसकी कुछ पॉसिबिलिटी आपको लगती है?
मुझे नहीं मालूम कि फिल्मों से कितना बदलाव आता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस तरह से समाज को देख करके समाज की फिल्में बनती हैं, उसी तरह से फिल्मों को देख करके भी लोग सोचते होंगे, और लोग अगर फिल्म देख के सोचें उसके बारे में, कुछ बहस करें, कुछ डिबेट करें, तो यही काफ़ी है कि आरक्षण जैसे मुद्दे को या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के मुद्दे को या नक्सल मुद्दे को लोग भूल ना जाए, ना समझें कि ये हमारी नहीं है, किसी और की है, ये अगर उसकी चर्चा करते रहें तो एक बहुत तो भी बहुत बढ़िया है।
अब चूंकि आपकी नज़र राजनीतिक मसलों पर बहुत रहती है, तो ये बताएं कि जेएनयू में जो कुछ हुआ है पिछले दिनों और मसला अब भी ख़त्म नहीं हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं?
जो वीडियोस हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, और अब शायद NHRC ने भी कहा है कि वो वीडियो ओरिजिनल नहीं है, उसमें डॉक्टरिंग की गई है, तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने लगाए नारे, किस तरह के नारे लगे, वो लगाने वाले स्टूडेंट्स थे कि नहीं थे। ये बात तो जाहिर है कि अगर हम देश के टुकड़े होने की नारे लगाते हैं तो वो लोग ज़रूर ही देश का भला नहीं चाहते हैं, ये बात है। लेकिन क्या ऐसा हुआ JNU में, पहले तो इसी पे भी बात है, क्योंकि कन्हैया जिसको अरेस्ट किया गया वो खुद ही कह रहा है कि मैंने ऐसे नारे नहीं लगाए थे, तो पहले ये तो तय कर लें। और हमारे देश में ये आज़ादी है कि हम किसी भी विषय पर बात कर सकें, डिबेट कर सकें। अगर अफजल गुरु की फांसी पे कुछ लोग चर्चा करना चाहते हैं या कुछ लोग सोचते हैं कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो इसमें क्या गलती है? देश ने जो काम करना था अपना किया, कानून ने जो अपना काम करना था किया, लेकिन लोग अपने विचार क्यों नहीं रख सकते? और अगर कोई वाकई देश के टुकड़े होने के नारे लगाता है और देश की बर्बादी चाहता है, तो निश्चित ही वो मतलब देश का भला नहीं सोच रहा। जो रास्ता हम सोचते हैं, जिस पर हम विश्वास जिसमें करते हैं, वो विश्वास करने का हक हमको है, और जो दूसरे विश्वास करते हैं उनके विश्वास को मान्यता देने का भी हक हमारा है। यही हमारी स्थिति रही है हमेशा से, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति यही कहती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एजिटेट करना चाहते हैं, तो उसकी आज़ादी तो होनी ही चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? कि आज मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही, उस मेरा जो है वो मानस कह रहा है कि इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, तो संघर्ष को आवाज़ देने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए?
तो आपने जो कुछ अब तक काम किया है उससे कितने संतुष्ट हैं आप?
अभी कुछ किया नहीं है खास मैंने फिल्मों के माध्यम से, मतलब अभी तक, हाँ कोशिश की है कि एक सुर मिले जिससे कि अपनी बात कहने में लोग थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं, लोग अच्छे समझते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं, ये बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन सही मायने में मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ फिल्म की विधा में या कला में या जगत में कोई बहुत गजब का काम कर दिया हो, ऐसा नहीं मानता मैंने। कुछ भी अच्छा करना बाकी है अभी।
अच्छा करना बाकी है कह रहे थे प्रकाश झा। कैसी लगी बातचीत हमको ज़रूर बताइएगा। और जहां तक बात एशिया कप के फाइनल मुकाबले की है, तो अभी भी बारिश की वजह से ये मुकाबला शुरू नहीं हो पाया है। इस बारे में हम आपको और जानकारी देंगे अपने अगले कार्यक्रम में। फिलहाल समय मुख्य समाचारों का।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों की जांच कर रहे आयोग ने तत्कालीन जिलाधिकारी, गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोषी ठहराया है, लेकिन अखिलेश यादव की राज्य सरकार को क्लीन चिट दे दी है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई हमलों के 24 गवाहों को आतंकवाद विरोधी अदालत के सामने पेशी के लिए पाकिस्तान भेजने की भारत से मांग की है। ईरान की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए गए अरबपति व्यवसायी बाबक जंजानी को मौत की सजा सुनाई है। उन पर करीब $3 अरब की हेराफेरी का आरोप था। इराक के शहर हिल्ला में भीड़ भाड़ वाले एक नाके पर आत्मघाती हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। BBC समाचार।
तो दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी घटना चक्र में अब से ठीक डेढ़ घंटे बाद। तो रहिए हमारे साथ। फिलहाल अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।